नमस्कार। खुद को पहचानने की ये जो हमने श्रृंखला शुरू की थी, आज इतना लंबा सफर तय करके हम उस मुकाम तक पहुंचे हैं जब हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। और अगर हम देखें तो खुद को पहचानते हुए, परमात्मा की पहचान करते हुए, समय चक्र को समझते हुए हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट देखा था कि किस तरह से परमात्मा स्वयं अवतरित हुए और वो अवतरण जो था वो कितना रियल भी लग रहा है और उतना ही मिराकुलस, चमत्कारी भी नजर आया। याद होगा कि हमने इस बात पर छोड़ा था कि जब ऑर्गेनाइजेशन बना माउंट आबू में 1952 में उनके हेडक्वार्टर्स ट्रांसफर हुए और वहां से ये सफर पूरे विश्व तक फैला। आगे इस बात को बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ और बदलाव आते गए, लेकिन खास बात यह है कि जो मकसद था पूरे ऑर्गेनाइजेशन का वो वही रहा। और इस पूरी बातचीत में हर बार की तरह हमारी हम सफर है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
ओम शांति।
एक बात बहुत से लोगों का भी ये सवाल है कि ये नाम ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ठीक है, ईश्वर द्वारा, ईश्वर ही वाइस चांसलर है, उससे करता धरता है, सारा ज्ञान वही दे रहे हैं, नाम ब्रह्मा कुमारी कैसे पड़ा?
जैसे हमने पिछली बार भी देखा कि निराकार परमात्मा शिव ने जब इस सृष्टि पर अवतरण लिया, क्योंकि हम कई बार कुछ भाई बहने कहते हैं अवतरण भी लेने की क्या जरूरत थी, परमात्मा को सृष्टि पर आने की क्या जरूरत है, भगवान इतना शक्तिशाली है तो वही से हमें ज्ञान दे दे। परमात्मा तो शक्तिशाली है, द ट्रांसमिटर इज वेरी पावरफुल, बट रिसीवर्स का क्या हालचाल है? तो परमात्मा की प्रेरणा को कैच करना वो हमारी इस समय कैपेसिटी नहीं है, और इसीलिए परमात्मा को डायरेक्ट आकर और एक मीडियम को फिर यूज करना पड़ा, और जिस मीडियम के मुख द्वारा जब हमें समझाना शुरू किया तब हमें धीरे धीरे वो समझ में आया, और तब भी वो सोल कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस में जाना उसमें टाइम और एफर्ट लगता है। अगर हमें सिर्फ प्रेरणा से वो नॉलेज मिल गई होती तो इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आए और एक मानव तन का आधार लिया, एक ह्यूमन बॉडी, एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम रथ भी कहते हैं, दादा लेखराज जो हमने पिछली बार भी देखा, एक डायमंड मर्चेंट परिवार में रहने वाले, बहुत ही धार्मिक विचारों के, लेकिन एक परमात्मा की खोज, तो जैसे कि एक आइडियल इंस्ट्रूमेंट जिसके पास सारे जीवन का अनुभव भी था, क्योंकि उस समय उन्होंने 60 वर्ष की आयु को क्रॉस कर लिया था, और डायमंड मर्चेंट होने के कारण उनकी परखने की शक्ति बहुत अच्छी थी, वो डायमंड्स को बहुत अच्छा परख सकते थे। तो इतने अनुभवी रथ को परमात्मा ने जैसे सिलेक्ट किया ड्रामा अनुसार, वो उनका रोल था, और दादा लेखराज के द्वारा ये ईश्वरीय ज्ञान आत्माओं तक पहुंचना शुरू हुआ, और जिस आत्मा ने उस तन में बैठे हुए परमात्मा को पहचान लिया कि ये ज्ञान इस आत्मा का नहीं लेकिन इनके द्वारा कोई शक्ति दे रही है, वो परमात्मा खुद दे रहा है, उसकी फिर यात्रा शुरू हो गई, क्योंकि सारा ज्ञान मिला ना, मैं कौन, वो कौन, और समय कौन सा चल रहा है।
इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये दादा लेखराज का ज्ञान नहीं है, ये डेफिनेटली हमें समझ में आ रहा है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी उसका मकसद अगर देखें तो ज्ञान को पहुंचाना है।
हाँ, क्योंकि समझ में आ गया ना, किसी व्हेन वी सो द साइकिल वी सो कि हम आत्माएं परम धाम से आई थी सत्युग में, जब हम आई थी तो हम कितनी प्योर थे और हमें नॉलेज थी कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के द्वारा कार्य कर रही हूँ। आज 5000 साल के बाद मैं आत्मा अंदर सो गई हूँ और ये मशीन ही अपने आप काम कर रही है। परमात्मा का रोल आकर उस ड्राइवर को फिर से जगाना, यू नो, इनसाइड, वेक अप एंड टेक कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि आने वाले समय की तैयारी। तो परमात्मा ने दादा लेखराज के मीडियम को यूज किया, उनके द्वारा आत्माओं को ये ज्ञान मिला, जिन आत्माओं ने अपने जीवन में वो परिवर्तन किया उन द्वारा फिर अनेक आत्माओं को मिला।
अगेन अनदर थिंग विच बिकम्स क्लियर इज कि वो कुछ हमारी जिंदगी में नहीं ट्रांसफॉर्म कर रहे, ट्रांसफॉर्म मेरे अंदर ही होगा. वंडरफुल.
दिस इज वेरी क्लियर विच वी हैव बीन शेयरिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. वॉट इज गॉड्स रोल? जो आज दिन तक हम कहते हैं भगवान ये कर सकते हैं, भगवान वो कर सकते हैं, नहीं, भगवान का इस सृष्टि पर रोल क्या है? आत्माओं को फिर से
उनकी अपनी सही पहचान देना. जैसे आई रिमेम्बर एक स्टोरी थी कि हनुमान जी को अपनी ही शक्ति के बारे में नहीं पता था, सो
तो वो अवेयरनेस लाना. हाँ. सेम हम ही तो वो आत्माएं हैं जिनको अपनी ही शक्ति के बारे में नहीं पता. तो परमात्मा आकर हमें ही वो शक्ति की जागृति लाते हैं और फिर जो आत्माएं उसको पहचान लेती हैं. मैजिक नहीं है. देयर इज नो मैजिक कि परमात्मा आए और एक सेकंड में सब परिवर्तन हो जाए. नहीं, वो आकर परिचय देंगे, फिर हम सबकी अपनी अपनी यात्रा होगी. जो जितना उस परमात्म महावाक्य को अपने जीवन में धारण करते जाएंगे, उनसे संबंध जोड़कर अपने आप को परिवर्तन करते जाएंगे और शक्ति को अपने अंदर इकट्ठा करते जाए. सो ईच वन्स जर्नी विल बी देयर ओन. और इसी तरह इस पूरी यात्रा पर जहाँ इतने सारे लोग थे तो दादा लेखराज भी उनमें से ही एक थे. लेकिन विशेष आत्मा तो विशेष रोल. तो दादा लेखराज ने उस यात्रा को बहुत ही खूबी से पूरा किया और वो सोल कॉन्शियसनेस की परफेक्शन की स्टेज को रीच किया. लेकिन उससे पहले जब उनके मीडियम को यूज किया गया तो शिव बाबा ने उनका नाम रखा प्रजा पिता ब्रह्मा. ब्रह्मा क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता. आज दिन तक हम जो सुनते हैं कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना हुई, तो रचना मतलब कोई नई सृष्टि क्रिएट नहीं हो रही है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो लाइक अ क्रिएशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड
अवेयरनेस.
यू नो यू आर क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड. तो शिव बाबा ने दादा द्वारा जो नई सृष्टि की रचना का कार्य किया तो दादा का नाम रखा प्रजा पिता ब्रह्मा. मतलब प्रजा का पिता. ये सब बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन उनको भी जैसे संभालने के लिए ये प्रजा का पिता. तो प्रजा पिता ब्रह्मा. और ब्रह्मा के मुख द्वारा जो बच्चे अडॉप्ट हुए. ये हमारा एक नया जन्म था ना, एकदम नया ईश्वरीय जन्म हम इसको बोलते हैं. तो वो जो बच्चे अडॉप्ट हुए वो हुए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी. ब्रह्मा के जैसे जो बच्चा होता है हम कहते हैं ना कुमार और कुमारी. मास्टर सो एंड सो मिस सो एंड सो. तो ब्रह्मा के द्वारा जो बच्चे अडॉप्ट हुए वो बने ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी. कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और कहते हैं ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी. तो इट्स नॉट ब्रह्म कुमारी, इट्स ब्रह्मा कुमारी. ब्रह्मा द्वारा जो कुमारी अडॉप्ट हुई. और फिर क्योंकि बहनों को आगे रखा एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य में, तो इसीलिए विद्यालय के नाम में ब्रह्मा कुमारी जाता है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय. लेकिन अदरवाइज इक्वल है विदिन द एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग इज इक्वल. कि भाई और बहने इकट्ठे मिलकर पूरे विद्यालय की संभाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहनों को आगे रखा तो विद्यालय के नाम में वो ब्रह्मा कुमारी जाता है. तो दादा का नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा. और जो कराची में 14 साल भट्टी चली तो उस समय जो छोटा सा संगठन था 350 का, उस समय उसका नाम था ओम मंडली. क्योंकि ओम की ध्वनि लगाते थे, आज भी ओम शांति जो हम कहते हैं. लेकिन फिर जब शिफ्ट हुआ 1952 में तो ऑर्गेनाइजेशन का विधि पूर्वक नाम पड़ा, तब ब्रह्मा कुमारीज नाम ये हुआ. और फिर 1952 से तो कार्य फैलता ही गया क्योंकि 14 साल की भट्टी पूरी हो चुकी थी. तो आत्माएं जैसे कि
परिपक्व हो गई,
एकदम
पक्की हुई,
एक तैयार. वो ज्ञान जो परमात्मा दे रहे थे वो सिर्फ समझ नहीं आ गया था लेकिन उसका स्वरूप बन चुके थे. मैं आत्मा हूँ वो समझ नहीं, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस का स्वरूप, वो कॉन्शियसनेस आ गई थी. तब 1952 के बाद शिव बाबा के डायरेक्शन अनुसार, क्योंकि हर कार्य परमात्मा की श्रीमत के अनुसार होता, तब माउंट आबू से निकल अलग अलग शहरों में जाना शुरू हुआ. और किसके निमंत्रण पर? परिवारों के निमंत्रण पर. जो बहनें उस समय अपने परिवार से छूटकर आई थी और 14 साल उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तन किया, जब वो इंडिया आ गए तो उनके परिवार यही थे. वो भी शिफ्ट हो गए थे पार्टीशन के दौरान. तो उन्होंने अपनी बेटियों को इनवाइट करना शुरू किया कि हमारे घर पर आओ, इतने साल से घर नहीं आए हो। और तब ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा, उनको हम प्यार से, क्योंकि वो भी फादर है तो हम ब्रह्मा बाबा कहते, तब बाबा ने उनको फिर अपने घर भेजना शुरू किया कि आपको जो मिला है अब जाकर सबसे पहले अपने परिवार के साथ ये शेयर करो। और ये कन्याएं जब अपने घर पहुंची तो परिवार को लगा कि ये तो कुछ और ही बनकर आ गई है, यू नो, क्योंकि एक ऑर्डिनरी गर्ल एंड आज एकदम सोल कॉन्शियस स्वरूप में जब अपने परिवार के सामने पहुंचे तो उनको लगता जैसे तो ये वो है ही नहीं जिसको हमने भेजा था। और फिर उन्होंने ज्ञान शेयर जब उनके साथ किया तो परिवार वालों को अच्छा लगने लगा, आस पड़ोस संबंधी जुड़ने लगे, सबको अच्छा लगने लगा। तो जब बहनों ने कहा कि अब हमें वापस जाना है माउंट आबू, तो उन्होंने कहा ये ज्ञान सबके साथ कौन शेयर करेगा, आप यहीं रुक जाओ। और तब धीरे धीरे सेंटर बनना शुरू हुआ कि आप सब लोग अगर माउंट आबू चले जाओगे तो यहाँ हम सबको कौन संभालेगा, हम सबकी पालना कौन करेगा। तब सेंटर्स बने,
वहां तक पहुंचने की बजाय ज्ञान लोगों के घर घर तक पहुंच,
क्योंकि वहां तक नहीं पहुंच सकते, परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आए थे अपने बच्चों से मिलने के लिए, तो परमात्मा का ज्ञान घर घर तक पहुंचाना था। आप देखो आज दिन तक हमने भगवान को ढूंढने की बहुत कोशिश की है, जप तप संन्यास उपवास सब कुछ किया, एक क्षण का साक्षात्कार हो जाए, लेकिन जब परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आएंगे और वो हमें ढूंढेंगे, वेरी इजी।
और वो 8000 सेंटर्स में परिवर्तित हो गया
कैसे हुआ? तो फर्स्ट सेंटर्स खुले दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, और बस दैट वाज जस्ट द बिगिनिंग। एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो स्टॉपिंग द ग्रोथ, इट जस्ट वेंट वन टू द अदर एंड टू द नेक्स्ट। एंड तब का शुरू हुआ 52 में, आज सिर्फ दिल्ली शहर में 150 सेंटर्स आर देयर, हर विद इन 5 to 10 किलोमीटर्स एक सेवा केंद्र है, क्योंकि बाबा ने कहा कि ये ज्ञान हर आत्मा तक पहुंचना है, हर आत्मा को पता लग जाना चाहिए कि परमात्मा आ चुके हैं। नहीं तो उनकी क्या गलती अगर उन्हें पता नहीं चला, और एंड में अगर उनको पता चला तो वो कहेंगे हमें तो पता ही नहीं था। अगर हमें पता होता तो फिर हम भी तो अपना पुरुषार्थ करते, हम भी तो आकर वो कनेक्शन जोड़ते।
वही है, पता होगा फिर उसके बाद डिसीजन उस आत्मा का है,
yes.
कि किस रास्ते पे चलेंगे।
आज भी तो ये संदेश क्या कर रहे हैं हम, ये संदेश हरेक तक पहुंचा रहे हैं। अब घर बैठे भी जो लोग सुन रहे हैं तो उन सबको ये परिचय मिल रहा है कि परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर एक एक बच्चे को अपनी पहचान दे रहे हैं। अब उधर से आगे अपनी जर्नी शुरू करना, ये हर आत्मा की अपनी यात्रा होगी।
सिस्टर शिवानी, यहाँ से सिर्फ भारत तक सीमित न रहकर विदेश पहुंची ये यात्रा, इस पे बात करेंगे इसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह से ये फैलाव हुआ। लेकिन उससे पहले बहुत से सवाल हैं हमारे दर्शकों के जो कि इन सेंटर से ही जुड़े हैं, कि जब हमें ये ज्ञान यूं घर बैठे भी मिल रहा है, एक बार हमें पता भी चल गया, तो वो जो मेडिटेशन की जो टेक्निक है वो हम या एक जुड़ने की या एक यू नो सशक्त होने का जो पूरा रास्ता है वो हम घर पे आराम से कर पाते हैं। हाँ। तो फिर हमें क्या सेंटर का क्या महत्व है एक्चुअली?
जो ज्ञान ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा शिव बाबा ने दिया वो ज्ञान सारा नोट डाउन हो गया है, जिसको हम अपनी स्पिरिचुअल क्लास या ईश्वरीय महावाक्य कहते हैं। तो ये ईश्वरीय महावाक्य रोज सेंटर पर सुनाए जाते हैं, और जिसको हम मुरली क्लास भी कहते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि ये सारे वर्ल्ड में, आज हमारे 8500 सेंटर्स हैं, सारे वर्ल्ड में हर सेंटर पर सेम मुरली क्लास रोज होती है, क्योंकि ये माउंट आबू से हर सेंटर पर पहुंचती है, जैसे कि 15 दिन की क्लास पहले पहुंच जाती है, तो हर सेंटर पर सेम स्टडी रोज हो रही है, इतना वेल कोऑर्डिनेटेड वो पूरा सिस्टम है। अगर हमें सिर्फ एक बार ये मैसेज मिल जाए कि मैं आत्मा हूँ और मैं घर बैठे उसको प्रैक्टिस करूं, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट फॉर मोर देन अ कपल ऑफ डेज, क्योंकि चारों तरफ का जो वायुमंडल है वो बहुत नेगेटिव है,
वो बार बार खींच रहे
हैं। यू नो इट्स लाइक द सेम थिंग कि अगर सब लोग सोए हुए हैं और मैं उठने की कोशिश करूं तो धीरे धीरे मुझे भी नींद आ जाती है फिर से, और नई भी आ रही हो तो चार लोग और मुझे खींच के सुला देते हैं। तो बीच बीच में आवश्यकता होती है ऐसे स्थान पर जाने की जहां और लोग भी जग रहे हैं, तो एक वायुमंडल बनता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रोज जब हम सेंटर पर जाते हैं या जब भी समय मिले तो हमें वो ईश्वरीय महावाक्य सुनने को मिलते हैं। इन्फॉर्मेशन विल क्रिएट थॉट्स, वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। तो जब तक हम वो इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे तो वो थॉट्स नहीं क्रिएट होंगे, कॉन्शियसनेस नहीं बनेगी। तो सिर्फ एक बार मैं आत्मा हूँ समझने से सोल कॉन्शियसनेस नहीं आएंगे। तो हम रोज जब क्लास में जाते हैं तो रोज शिव बाबा के महावाक्य के परमात्मा क्या कह रहे हैं हम आत्माओं से, वो रोज सुनने को मिलते हैं। तो इट्स लाइक गॉड्स लेटर विच कम्स फॉर मी एवरी डे एट द सेंटर। इट इज व्हाट गॉड हैज टू से टू मी, सो ऑब्वियसली आई वुड वांट टू गो टू द सेंटर टू लिसन टू दैट। तो हम जब सेंटर पे जाते सबसे पहली बात हमें वो ईश्वरीय महावाक्य मिलते, विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर, उससे ऊपर कोई और चीज नहीं। सेकेंड, हमें एक बहुत अच्छा परिवार मिलता, हु आर ऑल ऑन द जर्नी टूगेदर, यू नो, एंड वो ही परिवार जो हमारी तरह वर्किंग है, फैमिली में है, बच्चों के साथ है, एंड दे आर ऑल फेसिंग द सेम चैलेंजेस विच आई एम फेसिंग। सो अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस शेयरिंग, लॉट ऑफ लर्निंग, एंड अ लॉट ऑफ यू नो एवरीवन बीइंग ऑन द जर्नी टूगेदर इंस्टेड ऑफ अलोन। तो वो भी जाने से हमारा मोटिवेशन लेवल और बढ़ता है। और तीसरा, हमें बहने मिलती है जो हमारी बहुत अच्छी पालना करती हैं। बहनें हर सेवा केंद्र पर होती हैं जो इतने सालों से इस राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं, सो दे हैव दैट एक्सपीरियंस, दे हैव दैट नॉलेज, उन्होंने उस ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में धारण किया है। सो दे बिकम आर गाइड्स, नॉलेज इज हिज बट दे बिकम आर गाइड्स टू टेक अस ऑन द जर्नी। एंड हमें एक बहुत अच्छा वातावरण मिलता है, सेंटर का जो वायुमंडल होता है इट इज वेरी वेरी चार्ज्ड, क्योंकि वहाँ सभी लोग इकट्ठे मेडिटेशन करते हैं, यू नो, अकेले मेडिटेशन करो और इकट्ठे सबके साथ बैठ के मेडिटेशन करो, इट्स जस्ट मच मच इजियर बिकॉज यू गेट अ रेडीमेड चार्जर। तो सेंटर का वायुमंडल भी बहुत अच्छा होता है। 1952 से ये सारे सेंटर्स धीरे 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 इंडिया में खुलने शुरू हुए, बहुत तीव्र गति से सारी सेवा शुरू हुई। एंड 1969 में 18th जनवरी 1969 ब्रह्मा बाबा रीच्ड द स्टेज ऑफ कम्प्लीशन, जिसको हम कहते हैं परफेक्शन, जो एम था कि बॉडी कॉन्शियसनेस से 100% सोल कॉन्शियसनेस को जाना, उस एम को उस फर्स्ट आत्मा ने अचीव कर लिया। और उसके बाद शिव बाबा की ही श्रीमत से, शिव बाबा के ही डायरेक्शन से दादी प्रकाश मणि जी को विद्यालय का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड घोषित किया गया। और 2007 दादी प्रकाश मणि जी ने भी अपना पुराना शरीर त्याग दिया और वर्तमान समय दादी जानकी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम देखें कि जो फाउंडर है जब वो अपना शरीर त्याग देते हैं तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में एक थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आता है,
क्योंकि ही इज दैट यू नो फोर्स,
ही इज द फोर्स विच स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज हिज नॉलेज विच इज बीइंग शेयर्ड विद एवरीबॉडी। तो जब वो सोर्स हट जाए तो थोड़ा सा उथल पुथल जरूर आता है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जब हम देखते कि ब्रह्मा बाबा गए, अभी दादी प्रकाशमणि भी गए और कई बड़े दादिया और भाई अपना पुराना शरीर त्याग दिया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ओनली ग्रोज एंड ग्रोज एंड ग्रोज बिकॉज इट इज नॉट द वर्क ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अगर ये ब्रह्मा बाबा का कार्य होता या दादी का होता तो उनके जाने के बाद परिवर्तन आता, लेकिन ये तो शिव बाबा का काम है। और इसीलिए कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में भी आने का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, डायरेक्शन मिला एंड इट इज फॉलोड, सो दैट्स व्हाई द वर्किंग गोज वेरी वेरी स्मूथ। तो ब्रह्मा बाबा लेफ्ट द बॉडी इन 69 एंड 70-71 ऑनवर्ड्स इंडिया से बाहर इस विद्यालय का ज्ञान पहुंचता गया। इट स्टार्टेड फ्रॉम लंदन and London till date is the international coordinating office, and from London today it is in 120 countries. So 120 countries religions, different cultures, different castes, everybody. क्योंकि राजयोग ज्ञान है, इसका कोई धर्म, कोई जाति से कोई कनेक्शन नहीं है. हर एक जिस धर्म का है वो उसी धर्म में रहता है, कोई कन्वर्ट नहीं हो जाता, लेकिन अपने सत्य धर्म को पहचान लेता है कि माय ओरिजिनल रिलीजन इज द रिलीजन ऑफ प्योरिटी, रिलीजन ऑफ ट्रूथ, दैट सोल कॉन्शियसनेस. सो टुडे इट इज इन 120 कंट्रीज, 8,500 सेंटर्स स्प्रेड ऑल ओवर.
अमेजिंग. शिवानी, इफ वी टॉक अबाउट मूविंग आउट ऑफ इंडिया, जो यूनाइटेड नेशंस के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गठबंधन है, लाइक यूनाइटेड नेशंस अगर हम सोचते हैं तो एक पीस के लिए जो फॉर्म किया गया था वो एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आता है, जहां कोई भी आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे जुड़ सकता है, क्या है ये रिश्ता.
1980 में ब्रह्मा कुमारीज का अफिलिएशन हुआ UNDPI, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन. फिर 1983 में इसे कंसल्टेटिव स्टेटस मिला इकोसोक के साथ, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. एंड 1988 में फिर कंसल्टेटिव स्टेटस मिला यूनिसेफ के साथ. और तीनों में जो कार्य था, जो आपने कहा यूनाइटेड नेशन वर्क्स एट द लेवल ऑफ पीस एंड सो डज द ब्रह्मा कुमारीज. You know, and when a lot of groundwork goes into finding out what the organization is doing, but when they realized that they are genuinely working towards creating peace in the world, because self-transformation, difference sirf yahi tha ki bahar world mein you try to create peace in the world, and Raj Yoga teaches us create peace in the self, and when you create peace in the self, you automatically creating peace in the world. If I am peaceless and I try to create peace in the world, it's not possible. तो वो and जब भी United Nations का कोई भी project होता है about you know awareness of creating peace, Brahma Kumaris is always there with them at every step. And क्योंकि आज 120 countries में इतने सारे centers हैं, so these centers become like the hub, you know, from where the project is carried out all over the world. तो तब से this organization, the Brahma Kumari, very closely connected with the United Nations. And her project mein unke, jaise 2000 mein bhi, year of culture of peace. To usme all over the world, peace kya hai actually, ye awareness atmao tak pahunchana. Aur United Nations ne ye bhi dekha ki kitni badi task force hai. The number of people who have got together, क्योंकि आज लाखों परिवार हैं जो ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़े हुए हैं, घर ग्रस्त में रह रहे हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, फैमिलीज हैं, कपल्स हैं, everybody. And everyone wants to share with the world what they have got. क्योंकि जब आपका जीवन परिवर्तन होता है और आप देखते हैं कि आपके आसपास लोग दुखी हैं, अशांत हैं, you want to share it with
actually,
them.
Actually, it's natural.
You know, so that is the biggest motivator. And that dedication, जो हर आत्मा के अंदर है, कि परमात्मा शिव बाबा आ चुके हैं, I want to tell the world. You know, so every individual here serves the world with a lot of dedication. You know. All voluntary, koi bhi, nobody is paid to do what they're doing, but they're ready to do anything just to give the message to the world. So ek bahut badi task force hai, ek bahut bada infrastructure hai spread all over the world, and jo karya kar rahe hain wo bhi bahut hi purity aur bahut hi peacefully se ho raha
hai. In fact wo possible hai. The biggest thing about the whole philosophy is that it is possible.
Yeah.
You know,
because you practically can see the
ये impossible. ऐसा नहीं लगता कि किसी और के लिए कही जा रही है बात, ये मेरे पर लागू होती है. इनफैक्ट जब मैं सिचुएशंस को देखूं तो वो वही सिचुएशंस है जो सबके साथ है, लेकिन उनकी ट्रांसफॉर्मेशन मुझ पे लागू, एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट.
नो, इट्स वेरी इजी.
दैट्स द होल पॉइंट. ओके, वी मूव फ्रॉम UN टू मल्टीनेशनल,
राइट?
अगेन अ सेक्टर विच वर्क्स ऑन प्रॉफिट्स. मतलब उनका अगर मल्टीनेशनल्स की फिलॉसफी, जिस तरह का सिनेरियो क्रिएट होता है आज, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, दे आपको अगर ये कहा जाता है कि अगर आपको वो 5 लाख रुपया महीना दे रहे हैं तो आपसे 10 लाख का काम लिखवाएंगे, तभी दिया जा रहा है. और ये पूरे मल्टीनेशनल का जो सेटअप है, चाहे वो भारत में है या विदेश में, उनके साथ की कॉन्फ्रेंसेस,
राइट?
अगेन अ सेक्टर विच इज लाइक totally into profit making, right. And there is this sector which is so spiritual,
right.
Which is talking about peace.
Till the 1980s, or let's say 1990 beginning, this was only hardcore spiritual knowledge. Atma ki pehchan, Paramatma ka pariche, samay, karmic philosophy. We didn't go anywhere beyond that. And values. Values ko apne jeevan mein kahan dharan karna. Lekin jaise jaise log judte gaye, corporates judte gaye, on an individual level, wo judte gaye, unke jeevan mein parivartan aya, to unhone dekha ki ye sara gyan hamari company ke sab logon ke liye bahut useful hai. But ye malum tha ki ye isko aise ka aise hum nahi share kar sakte hain. You know, the knowledge will have to be in a way which is applicable to my professional life. Tab kai courses develop hue, jaise ki self-management leadership, stress management, relationships, lot emotional intelligence, phir ab spiritual intelligence, attitudinal transformation. Ye sare courses kya develop hue? Gyan wohi tha. Basic foundation wohi hai, meditation wohi hai. Lekin isko प्रोफेशनल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे?
गॉड से इंस्पिरेशन लेके ही,
गॉड ने कार्य उसी की श्रीमत
से जो भाषा आपको आती है उसी भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ. फाइनली आगे आपने भी यही
उसी तरह से
जो भाषा उनको आती है उसी भाषा तक.
तो फिर बहुत सारे कॉर्पोरेट्स जुड़ गए और मेन चीज ये थी क्योंकि नॉलेज को प्रैक्टिकली ट्राई किया था पहले. तब जब हम औरों के साथ शेयर करते हैं तो उनके लिए भी उसको अपने जीवन में अप्लाई कर पाना ईजी हो जाता है. और उन्होंने देखा कि कितना कल्चर ही बदल जाता था. आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जिनका टोटल वर्क कल्चर बदल गया, जिनके इम्प्लॉयज की पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो चुकी है, टीम स्पिरिट. कई ऐसी कंपनीज हैं जहां बहुत हड़ताल हुआ करती थी, वो सब जब ठीक हो गया है, रिलेशनशिप्स ठीक हो गए हैं, प्रोडक्टिविटी जिसकी हम बात करते हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई है, जस्ट बिकॉज वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन आवर सेल्फ. द सेल्फ मैनेजमेंट दैट बिकेम द टूल, यू नो दैट अनलेस यू मैनेज योर सेल्फ यू कैन नॉट मैनेज अ कंपनी, यू कैन नॉट मैनेज अ टीम. तब ये प्रोग्राम्स बने और आज तो देश में भी और विदेश में भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में ये प्रोग्राम्स रेगुलरली कराए जाते हैं. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन योर प्रोफेशन. अंडर द राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन वी हैव 18 विंग्स, वी कॉल देम विंग्स, टू केटर टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. सो वी से एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग, एजुकेशन विंग, मेडिकल विंग, के उस प्रोफेशन में नॉलेज को कैसे अप्लाई करें.
देर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स still pending. There are a lot of questions still with the organization, about the organization, lot of, you know, those myths which are attached. So there are still more questions, sure. But wo hum agli kadi mein zarur shamil karenge. Aaj ki is puri baat cheet ke liye bahut bahut dhanyawad.
Om Shanti.
Om Shanti. Sach par agar aadharit ho to sachmuch, aur ek jaise kehte hain ki beech mein agar jaan hai ya beech mein sachchai hai to wo itna bada ped ban sakta hai. जिस तरह से ये पेड़ बना है, जिस तरह से फैला है ये ऑर्गेनाइजेशन, और किस तरह से उसी ईश्वर का वो ज्ञान वो स्वयं इन ऑर्गेनाइजेशंस, इन पूरे सेंटर्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, इट्स अमेजिंग एक्चुअली. अगर हम ये जर्नी देखते हैं तो